Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
American lekhak Annie Dillard ne kaha hai ki how we spend our days is of course how we spend our lives. यानी कि हम जैसे अपने दिन बिताते हैं वो ही हमारा जीवन बन जाता है। हम में से कई लोगों के लिए हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा काम पर व्यतीत होता है। वास्तव में औसत व्यक्ति अपने जीवन काल में काम पर 90,000 घंटे बिताता है। कुछ लोगों के लिए अपनी नौकरी ही अपने जीवन का सार बन जाती है। ऐसे में अगर आपको ये खबर मिले कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है या आपको अनावश्यक यानी रिडंडेंट कर दिया है तो ये स्थिति दिमाग पर काफ़ी गहरा असर कर सकती है, खासकर से अगर आप 40 साल या 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। रिडंडेंट होना या नौकरी से निकाला जाना दुर्भाग्यवश तो है, लेकिन आपके करियर का अंत नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बता रही हैं करियर कोच दिव्या कटारिया।
आपको पहले थोड़ा सा टाइम देना चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या हुआ है। हम काफी इमोशंस फील करते हैं, तो पहली बात यह है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, चाहे एक घंटा आधा घंटा वॉक पे जाएं, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को ताकि आप ये समझ पाए कि क्या हुआ है, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको बोला है कि आज आपका आखिरी दिन है और आपको लॉग आउट करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ईमेल्स में जाएं और चेक करें आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, कि कब आपको किसी क्लाइंट ने ग्रेट सर्विस का ईमेल भेजा, कब आपको आपके मैनेजर ने कोई अवार्ड के लिए मे बी नॉमिनेट किया हो, या आपको कोई अकॉम्प्लिशमेंट्स या रिकग्निशंस हो आपकी उस कंपनी में, और उसका प्रूफ आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने आपको फॉरवर्ड कर लीजिए अपने प्राइवेट ईमेल पे, ताकि आप वो सारी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने काम किया है, अच्छा काम किया है, वो सारा आप कलेक्ट कर पाए ताकि आप अपने रेज्यूमे में उसको लिख पाए। क्या होता है कि जब हम लेड ऑफ हो जाते हैं तो हमारे इतने इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं कि हम ये सब चीजें भूल जाते हैं कि हमें प्रूफ वो कलेक्ट करना चाहिए कि हमने कैसे उस कंपनी की बिजनेस को बढ़ाया है, क्या हमारा इम्पैक्ट हुआ है। तो पहले तो ये कलेक्ट करिए। दूसरी तीसरी चीज ये है कि आप अपने मैनेजर्स के साथ बैठिए और आप उनसे पूछिए कि मेरा इम्पैक्ट क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन पे, कि अगर आप मुझे मेरे परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स दे दें। तो ये क्या होता है कि ये मैनेजर जो हैं उनको हर साल जब आपका सैलरी रिव्यू करते हैं या परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को नंबर देते हैं आउट ऑफ 10, और आपको क्या हो सकता है कि आप कस्टमर सर्विस में तो आपका क्वालिटी स्कोर क्या था कॉल पे, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग में हो आपने कितनी एप्लीकेशन अप्रूव की, या आप HR में हो आपने कितने कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया। तो वो नंबर्स कभी कभी हम भूल जाते हैं इकट्ठा करना, और अगर आप लेड ऑफ हो तो वो नंबर्स मांगिए, बिकॉज वो नंबर्स आप CV में लिख सकते हैं, आप अपने कवर लेटर में बता सकते हैं, और वो नंबर्स आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं। बिकॉज क्या होता है कि रेज्यूमे में जितने आपके नंबर्स आप डाल सकते हैं कि मैंने इतना काम किया और इतने परसेंटेज उसका इम्पैक्ट हुआ, इतने परसेंटेज मैंने एप्लीकेंट को हायर किया, उससे आप अपना क्वांटिफाई कर सकते हैं अपना रेज्यूमे। तो ये चीजें करनी बहुत जरूरी है बिफोर आप लॉग आउट करें अपनी जॉब में। तो आखिरी दिन
40 वर्ष की आयु में अगर ये व्यक्ति जिनको रिडंडेंट कर दिया है या ले ऑफ कर दिया है, ये नए रोल्स में अपने मौजूदा कौशल यानी एग्जिस्टिंग स्किल्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
अगर आप 40 साल के हैं या उससे ज्यादा उम्र है आपकी और आप लेड ऑफ हो गए हैं, या आपको लग रहा है कि शायद आपको कॉल या ईमेल आने वाला है अगले कुछ दिनों में, तो पहली बात तो ये, जैसे मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, स्पेशली जो ओल्डर एज ग्रुप होते हैं, आजकल जेंजी मिलेनियर का क्या है कि हम हर 2 साल में जॉब चेंज करते हैं, वो जो थोड़े से ओल्डर आयु के लोग होते हैं वो थोड़ी ज्यादा टाइम रहते हैं जॉब में, तो उनका क्या होता है, उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है कंपनी में, बिकॉज उन्होंने मल्टीपल रोल्स चेंज किए होते हैं उस कंपनी में। कुछ लोग तो 10-10 साल से कंपनी में होते, तो उन्होंने देखा होता है कि कंपनी स्टार्टअप से सक्सेसफुल कैसे हुई। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप 40 साल की उम्र है या ज्यादा है और आपने काफी टाइम, लेट्स से 5 ईयर, 5 साल या उससे ज्यादा आपने काम किया है कंपनी में, तो सबसे पहली बात क्या करनी है कि आपको अपनी एक करियर जर्नी बना लीजिए आप, कि बैठिए अपने साथ एक घंटे एक पेन और पेपर लेके और देखिए कि पहले साल आप आए तो आपका क्या रोल था, कंपनी के क्या चैलेंजेस थे, तो टू नाउ कि आज तक आपके कंपनी कैसे चेंज हुई, आपका रोल कैसे चेंज हुआ, क्या पता आपने किसी को कोचिंग दी हो, मेंटरिंग दी हो, क्या पता आपने लीडरशिप एक्टिविटीज की हो, क्या पता आपने मैनेजेरियल एक्टिविटीज की हो, तो वो सारा आप लिख लीजिए, बिकॉज वो एक आपकी करियर ट्रेजेक्टरी हो जाती है जो आपको आगे नेटवर्किंग में भी मदद करेगी, जो आपको आपके सीवी में भी मदद करेगी और इंटरव्यू में भी मदद करेगी, बिकॉज एम्प्लॉयर जो हैं वो काफी वैल्यू करते हैं कि आप एक कंपनी में रहे ज्यादा टाइम के लिए, बिकॉज वो लॉयल्टी शो करती है, वो सिंसियरिटी शो करती है, और वो ये भी शो करती है कि आप एक वो इंसान है जो स्टार्ट टू फिनिश तक रहेंगे, तो कमिटमेंट भी शो करती है।
ये जो व्यक्ति है जिनको रिडंडेंट कर दिया है, इनको अपना रेज्यूमे बनाना है, तो इनको अपने रेज्यूमे क्या क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए?
गुड क्वेश्चन। तो रेज्यूमे जो है अब लेआउट काफी चेंज हो गया है, जो पिछले लगभग पांच छह साल में रेज्यूमे का लेआउट चेंज हो गया है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो अपने रेज्यूमे में फोटो मत डालिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक काफी लोग करते हैं, वो अपनी फोटो डाल देते हैं। फोटो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस में नहीं डालते हम ये फोटो, तो फोटो हटा दीजिए। दूसरी बात ये है कि अपनी पर्सनल डिटेल हटा दीजिए, ये बहुत कॉमन है कि हम अपना मैरिटल स्टेटस डाल देते हैं, हम अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर या सिटीजनशिप नंबर या वीजा नंबर डाल देते, तो ये सब आप मत डालिए। आपके सीवी में आपका नाम होना चाहिए, आपकी जॉब टाइटल आपके नाम के अंडर, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास लिंक्डइन है तो उसका लिंक, और आपका ईमेल एड्रेस, और ये भी है कि एक सीवी में एक समरी होनी चाहिए उसके बाद, तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले आ गई, दूसरा सेक्शन से समरी, मतलब 3-4 लाइन में आप अपना एक्सपीरियंस को समराइज कर दीजिए कि आपकी पांच की मतलब आपकी पांच स्ट्रेंथ्स क्या हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो गई, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो गई, चाहे वो एचआर में हो आप, तो आपका रिक्रूटमेंट हो गया, जो भी है पांच स्ट्रेंथ आप वो मेंशन करिए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए जस्ट एक समरी में। फिर उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि अगर आप लेट्स से 40 साल के हैं और आपके पास काफी एक्सपीरियंस है सालों का इंडस्ट्री में, तो आपको अपनी एजुकेशन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, एजुकेशन दूसरे पेज पे भी आ सकती है। तो पहला जो पेज है वो सबसे ज्यादा टाइम रिक्रूटर लेगा पढ़ने में, तो जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको वो पहले पेज में डालनी चाहिए, जो हो गई आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जॉब टाइटल, आपका समरी और आपका वर्क एक्सपीरियंस। और वर्क एक्सपीरियंस भी जो आपका सीवी में होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब अभी की जॉब है तो उस और फिर पीछे जाते जाइए। ये भी काफी है कि काफी लोगों का जो रेज्यूमे होते हैं वो 5-5 पेजेस लॉन्ग होते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका रेज्यूमे अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 पेज का होना चाहिए, अगर आपके पास 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 3 पेज का कर सकते हैं, बट एनकरेज ये होता है कि 2 पेज का रेज्यूमे है उतना काफी होता है, क्योंकि जो आपका पहला रोल था, मान लीजिए कि आपने 20 साल पहले एक अपना करियर शुरू किया, तो आपका जो शुरुआत का रोल था, जो जूनियर रोल थे, उनको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंशन कर सकते हैं। आपको जो आपके रीसेंट रोल्स है जिसमें आपकी मेजर अचीवमेंट्स हैं, जिसमें आपने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैंडल करे हैं, या आपको लगता है कि आप अपना स्किल्स दिखा सकते हैं, आप वो रोल्स को एक्सप्लेन करिए सीवी में। तो सीवी जब हम लिख रहे होते हैं तो आप पहले, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप पहले जितना लिखना लिख दीजिए, आप पहले 3 पेज का सीवी बना लीजिए, फिर आप वापस जाइए अगले दिन सोने के बाद, उसको पढ़ो और फिर उसको जो भी चीजें अननेसेसरी है उसको आप डिलीट करते जाइए, बट आप यही जरूर रखिए कि 2 पेज का होना चाहिए सीवी।
जी, एक सवाल यहाँ पे उठता है दिव्या, आपने कहा कि हमेशा अपना करंट रोल जो है वो पहले लिखें फिर पीछे जाते जाइए। अब कई बार क्या होता है कि 40 साल में जो अपना करियर चेंज कर रहे हैं, तो क्या पता उनका जो लास्ट करियर है या जॉब है वो जो करना चाहते हैं उससे मेल नहीं खाता, तो अब आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो जॉब लिखें जो पहले कर रखी है, या फिर जो अप्लाई करनी है जॉब उससे मेल खाता हुआ एक्सपीरियंस ऊपर डालें?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है, बट इसको मैं ऐसे आंसर करूंगी, अगर आपकी जो जॉब है जो सबसे ज्यादा मैच हो रही है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें, मान लीजिए कि मैं 40 साल की हूँ और मैंने HR में जॉब करी थी 4 साल पहले और अब मैंने चेंज कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट? तो अगर मैंने 4 साल पहले HR में जॉब करी तो मैं उसको ऊपर डाल सकती हूँ, पर अगर आपने 5 साल पहले, 5 साल या उससे ज्यादा पहले कोई जॉब करी है तो वो बहुत पुरानी हो जाती है, फिर आप उसको ऊपर नहीं डाल सकते, तो एक रेलेवेंसी का इशू आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने अभी जो एक्सपीरियंस है उससे सिमिलर स्किल सेट नहीं निकाल सकते। तो लेट्स से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं अभी, जनरल आप एडमिन, रिसेप्शन, रिसेप्शनिस्ट या कोऑर्डिनेटर का रोल कर रहे हैं और आपको जाना है HR में या आपको कस्टमर सर्विस में जाना है, तो आप उसमें सिमिलैरिटीज बना सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़िए, एटलीस्ट 10 से 15 जॉब्स पढ़िए जिसमें आपको जाना है, जो आपको लगता है आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है या आपका पैशन है। उन 10 से 15 जॉब में कॉमन स्किल्स क्या आ रही हैं उसको लिस्ट कर लीजिए, एक पेन पेपर पे या अपना PDF पे आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, जो वो कॉमन स्किल्स हैं। फिर आप वो सोचिए कि आपने वो स्किल्स कैसे दिखाई हैं अपने अभी करंट रोल में। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या पता फोन पे कस्टमर्स को रिप्लाई कर रही हैं, आप क्या पता ईमेल पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं कि शिपमेंट डिले क्यों हो गई, और वही चीज कस्टमर सर्विस में भी जा सकती है, राइट? कि आप फोन पे कस्टमर सर्विस में आप इनकमिंग क्लाइंट्स को गाइड करेंगे, तो वो सिमिलैरिटीज बनाइए और वो एग्जाम्पल्स के तरीके से अपने CV में दिखाइए। लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ मेंशन कर देते हैं मैंने ये किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बट रिक्रूटर को क्या देखना है कि मैंने ये किया है और ये एग्जाम्पल्स हैं उसके, तो लोग एग्जाम्पल्स नहीं देते। तो वो एग्जाम्पल्स देने बहुत जरूरी हैं ताकि वो रिक्रूटर समझ पाए कि आपने ये स्किल्स, माने ही आप करियर चेंज कर रहे हैं बट आपके पास ऑलरेडी ये स्किल्स हैं क्योंकि आपने सिमिलर रोल करा है पहले या सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी हैं।
रिडंडेंसी के बाद नया रोल खोजने में नेटवर्किंग कितना जरूरी होता है?
नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो काफी लोगों को अनकंफर्टेबल फील करती है कि हम क्या बात करें, कहाँ जाएं, लिंक्डइन पे कैसे नेटवर्किंग होती है, फेस टू फेस कैसे नेटवर्किंग होती है। तो नेटवर्किंग बहुत जरूरी है बिकॉज नेटवर्किंग से क्या है, आपका इंटरनल नेटवर्क आपकी कंपनी में और आपका एक्सटर्नल नेटवर्क आपके कंपनी के बाहर जो लोग हैं उनसे बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी और कंपनी में है और आपने उनके साथ लेट्स से एक प्रोजेक्ट पे काम किया, आप कुछ ज्यादा नहीं जानते उनको बट नाम नाम में आप जानते हो कि एक दो बार बात हुई है, कोई मीटिंग में मिली है, तो आप उसको नेटवर्क उस बंदे से आप कर सकते हैं। आप उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, कॉफी पे मिल सकते हैं और हर चीज प्रोफेशनली पूछ सकते हैं। अगर उनकी कंपनी में जॉब निकली है और आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि नेटवर्किंग वो आपको मदद कर सकते हैं बिकॉज दूसरा बंदा भी कंफर्टेबल होगा आपको रेफरेंस देने के लिए। बट अगर दूसरा बंदा आपको नहीं जानता प्रोफेशनली, अगर दूसरा बंदा आपका डिलीवरेबल्स को नहीं जानता, आपके कैलिबर को नहीं जानता, तो वो आपको रेफरेंस नहीं दे पाएगा। तो नेटवर्किंग रेफरेंसेज में काफी मदद करती है। कुछ जो रोल्स होते हैं कंपनीज में वो इंटरनल वैकेंसीज के लिए होते हैं। 50% लेट्स से रोल्स पहले इंटरनल ही निकलते हैं कि कोई हमारा इंटरनली टीम मेंबर है जो अप्लाई करना चाहता है, और जब इंटरनली लोग नहीं मिलते तो एक्सटर्नली रिक्रूटर्स एडवर्टाइज करते हैं लिंक्डइन या सीक पे। तो नेटवर्किंग में क्या मदद हो जाती है कि इंटरनली कोई इंसान उस कंपनी में ऑलरेडी है, उसको ईमेल आया है HR से, जैसे सबको जाता है मास ईमेल कि ये वैकेंसीज निकली है, तो अगर वो आपको जानते होंगे तो वो HR को बता सकते हैं कि माना ये वैकेंसी इंटरनल है बट मैं रेफर कर सकता हूँ किसी को
जी।
तो HR आपको आपको वो जो हिडन जॉब्स हैं उसको भी आपको एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि नेटवर्किंग से क्या होता है, भले आपको एक जॉब ना मिले वो HR आपको याद रखेगी क्योंकि आप किसी के रेफरेंस से आए,
जी
राइट? तो वो HR फिर आप आगे HR को भी अपने नेटवर्क में डाल सकते हो। तो ये मेरे साथ भी हुआ था लास्ट ईयर जब मैं जॉब चेंज कर रही थी, मेरे को एक जॉब का ऑफर आया नेटवर्क से, मैंने किसी एक कंपनी में अप्लाई किया जॉब, इंटरव्यू करा, बट जिस मैनेजर में मुझे इंटरव्यू कर रही थी वो उसका आखिरी दिन था, तो वो जिस कंपनी में जा रही थी वो मुझे उस कंपनी में लेके जाना चाहती थी, तो उस रिक्रूटर ने मेरा फोन नंबर पे कॉल किया और बोला कि रेफरेंस से आए हो आप तो हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं।
अच्छा।
मैंने वो जॉब नहीं दी बट आज भी मैं उस रिक्रूटर से मैसेज पे बात करती हूँ, मैं उसको क्रिसमस पे मैसेज भेजती हूँ, मैं उसको न्यू ईयर पे मैसेज भेजती हूँ, और वो आपको कनेक्शन और वो रिपोर्ट और वो आपको रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और चीज दिमाग में आती है कि कोई سرٹیفیکیشنس یا اسکلس ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گی کہ اب 40 کے بعد اگر آپ کی جاب چلی گئی ہے تو اپنے آپ کو اور ادھک مارکیٹیبل بنایا جا سکے ایسے کچھ سرٹیفیکیشنس کر کے؟
سرٹیفیکیشنس آپ کر سکتے ہیں, لنکڈ ان پریمیم پہ بھی کافی فری سرٹیفیکیشنز ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں. کچھ آپ نے انڈسٹری اسپیسیفکیشن سرٹیفیکیشن کر سکتے ہیں, بٹ سرٹیفیکیشن ایسے کمپلیکس چیز ہے کہ وہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ڈپینڈ کرتی ہے. تو جیسے اگر آپ انجینئرنگ میں ہیں, آپ کو کیا پتا ایک انٹرنل جو پرچیز آرڈر کا جو ہوتا ہے زیرو, جس میں ہم انوائسنگ کرتے ہیں, وہ آپ کو نہیں آتی ہو کیا پتا, تو آپ اس کی سرٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ زیرو کیسے کام کرتا ہے. کبھی کبھی کیا پتا آپ ایڈمن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایکسل نہیں آتی ہو, اسپریڈ شیٹ نہیں آتی ہو, تو آپ اس کی سرٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. یوزلی سرٹیفیکیشن آپ کو تب کرنی چاہیے جب آپ جاب 10 سے 15 جابز آپ پڑھیں اور آپ ایک کامن دیکھیں, کامن کوئی ٹیکنیکل سافٹ ویئر مینشن کیا ہے جو آپ کو نہیں آتا, آپ اس کی پھر سرٹیفیکیشن آن لائن ڈھونڈ سکتے ہیں. لنکڈ ان بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لنکڈ ان پریمیم اگر آپ کے پاس ممبر شپ ہو تو اس پہ کافی ہے سرٹیفیکیشن, وہ آپ کے آٹومیٹکلی لنکڈ ان پروفائل پہ ایڈ ہو جاتی ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. دوسرا ہے کہ کچھ انڈسٹری میں بھی سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, اب وہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا دیویا, آخری سوال جانے سے پہلے, اب فرض کر لیجیے ریڈنڈنٹ تو ہو گئے ہیں یہ انسان, اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کے اپنے سپنے ہوتے ہیں, انٹرپرینوریل ڈریمز ہوتے ہیں, اپنا ویوسائے شروع کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ریڈنڈنسی کے ایک دم بعد اتنا بڑا قدم لیا جائے, اور یہ نرنے اگر لے رہے ہیں تو اس کو سوچتے سمے یا اس کو کرتے سمے کن کارکوں یعنی فیکٹرز کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟
میرا جواب ہوگا نہیں. اس کا ریزن یہ ہے, کافی کانٹروورشل جواب ہے, کہ پہلے آپ یہ دیکھیے آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے. اگر آپ کے پاس 4 سے 6 مہینے کی سیلری سیونگ میں ہے اور آپ اپنے انٹرپرینور ڈریم کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ رسک لے سکتے ہیں. بیکاز کوئی بھی اگر آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو پہلے 4 to 6 منتھس آپ اس کو فارم کر رہے ہیں, تو کیا پتا آپ کے ریٹرنز نہ آئیں سیدھا. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ فائنینشلی اگر آپ سیکیورڈ ہیں اور آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لیجیے جو آپ کا 20 hours a week چل رہی ہے, 20 hours, اور آپ کے پاس باقی ٹائم ہے اپنا انٹرپرینوریل ڈریم کو
چیز کرنا, مطلب ہاں. چلیے دیویا, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد.
تھینک یو.